Linie. Das kann man anbauen. Und die Stärke. Da war du gewonnen. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جس کو اللہ نے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر ملا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ان کے لیے کوئی بھی دعا فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستجیب دعا کون ہو سکتی تو کسی چیز کی بھی دعا فرماتے لیکن جو دعا فرمائی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی دعا کسی کے لیے فرمائیں وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک بڑی وقعت والی عظمت والی محتم بشان چیز ہوگی تو ان کے لیے دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ تو ان کو فہم دین عطا کر اے اللہ ابن عباس کو فہم دین عطا کر اصل یہ فہم ہی جو ہے بڑی عجیب اور عظیم چیز لیکن ویجتبی الیہ من ینیب ویجتبی الیہ من یشاء اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسی کو کھینچتے ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں ایک سالک ہوتا ہے مجذوب سالک اور ایک سالک ہوتا ہے سالک مجذوب سالک سمجھتے ہو سلک یسلک فہو سالک چلنے کے معنی میں اور سالک چلنے والا تو عام اصطلاح میں سالک اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ڈھونڈنے کے راستے میں چلتا ہے جس کو عام اصطلاح میں طریقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ طریقت جو ہے یہ شریعت سے کوئی جدا چیز نہیں ہے جیسے جاہل صوفیوں نے یہ بات عام کر دی کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے معرفت کچھ اور ہے یہ ساری چیزیں جہالت پر مبنی ہیں مقصود شریعت ہے اور شریعت ہماری کامل ہے ہماری شریعت کامل ہے ادھوری نہیں ہے چاہے آپ اس کو طریقت معرفت حقیقت جو بھی نام بتا دو وہ سب اس میں شامل ہے شریعت میں شامل ہے تو اس راہ میں چلنے والے کو اس راہ پر گامزن ہونے والے کو سالک کہتے ہیں کہتے ہیں سالک اور اس کو راہ سلوک بھی کہتے ہیں अब इस राह सलूक में चलने वाला दो किस्म के होते हैं, एक सालिक मजसूम और एक मजसूम सालिक। सालिक मजसूम वो रियाजत करता है, मेहनत करता है और उसके बाद अपने नफ्स के ख्वाहिशात की मुखालफत करता है, अपने नफ्स में जो इखलाक रजीला हैं उन इखलाक रजीला को बड़े मशक्क़त से उनको खिलाफ उन अपने कल्ब को अपने बातिन को इन बुरे अखलाक से पाक व साफ करने की क्या करता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है। क्यों कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि देखो तुम तज़किया इख्तियार करो, पाकी इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर जो गंदगियां हैं इन गंदगियों को दूर करो। कहा नहीं कहा? तो ये सालिक इन पर मेहनत करता है, अपने नफ्स पर नजर रखता है कि नफ्स में मेरे अंदर क्या क्या खराबियां हैं। अब यहां पर ही इसको उस्ताद की जरूरत पड़ती है, यही वो जगह है जहां इसको कामिल उस्ताद की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इसको खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरे अंदर कौन सी खराबियां हैं और अगर हैं तो किस हद की हैं, और अगर उनको पहचान भी लेगा तो उनका इलाज कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा, इसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको जिसको आम इस्तिलाह में क्या कहते हैं, इसको शेख की ज़रूरत पड़ती है, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये अपने अपने अमराज बातिना का, बातनी बीमारियों का इलाज कर ले और सेहत जिस्मानी के साथ साथ सेहत रूहानी भी क्या कर ले, हासिल कर ले। तो इसके लिए इसको मेहनत करना पड़ती है। अगर ये मेहनत के लिए तैयार नहीं तो इसको हासिल भी कुछ नहीं होगा। अगर ये मेहनत के लिए तैयार नहीं, नफ्स के साथ झगड़ा लेने के लिए तैयार नहीं, नफ्स की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर इसको फ़ायदा नहीं होगा। ये नफ्स की गुलामी में कहाँ चला जाएगा, नफ्स कहाँ ले जाएगी? जाहिर है नफ्स इसको, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स घोड़े पर सवार, किस पर सवार है? घोड़े पर सवार है। तो अगर इसने घोड़े को आज़ाद छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, लगाम हाथ से छोड़ दी, तो घोड़ा जो है घास खाने बैठेगा, जहाँ घास देखा वहीं बैठेगा और चलने का नाम नहीं लेगा, है कि नहीं? घोड़ा अगर इसने अपने को घोड़े के हवाले कर दिया, घोड़े को आज़ाद छोड़ दिया, लगाम हाथ से ढीली छोड़ दी, अब ये घोड़ा क्या करेगा? अब जहाँ पर इसने कोई घास का टुकड़ा देखा, घास ज़मीन में किसी जगह घास थोड़ी सी उगी हुई देखी, दरख्त कोई देखा, वहीं बैठा और चलने लगा। अब ये शख्स मंजिल पर पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। और दूसरा ये कि ये घोड़ा जिस सिमत में इसको चलना है, इस शख्स को घोड़ा सवार को जहाँ जाना है, ये उस रास्ते पर नहीं चलेगा, दूसरे रास्ते से ले जाएगा। अपने मन पसंद रास्ते से ले जाए। अब ये घोड़ा सवार जो है, ये घोड़ा इच्छा सवार जो है, ये किसके टांगों से चलता है? घोड़े की टांगों से, अपनी टांगों पर तो नहीं है, घोड़े पर सवार है, लेकिन घोड़े की भी आंखें हैं, तो क्या ये घोड़े की आंखों से देखता है? अगर ये घोड़े की आंखों पर इसको छोड़ देगा तो फिर भी ये मंजिल पर, लेकिन अगर ये घोड़ा अपनी आंखों को छोड़कर जिस जो शख्स इसके ऊपर सवार है उसकी आंखों से देखेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा, है कि नहीं? यहां दो मिसालें, तो ये दो अलग अलग चीज। एक में कि घोड़े को अगर लगाम छोड़ दी, आजाद छोड़ दिया, तो ये घोड़ा इसको मंजिल पर पहुंचाने वाला नहीं है, जहां देखेगा। और नफ्स का भी यही हाल है कि नफ्स ने जहां कोई चीज देखी, खाने की मरक्कन चीज देखी और जो इसको ललचाने वाली चीज देखी तो वहीं बैठ गया, अब इसको आगे चलने की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ये शख्स, अब ये हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है, वल्लाहु आलम किस हद तक ये उन्हीं का है, लेकिन बात तो किसी बुजुर्ग ही की है कि आखिर उम्र में बड़े ज़ईफ थे, बदन बड़ा ज़ईफ था, बहुत कमजोरी थी। तो किसी ने कहा कि भाई हजरत आपका घोड़ा जो है बड़ा लागर हुआ है, कमजोर हुआ, यानी बदन। तो जवाब दिया, कोई फिक्र नहीं, ये मंजिल पर पहुंचा हुआ है, अब तो इसको कमजोरी नुकसान नहीं देगी, लेकिन वो उस शख्स के लिए है जो मंजिल पर पहुंचा, लेकिन जिसको चलना है, जो सालिक है, उसको घोड़ा भी मजबूत होना चाहिए, घोड़ा मजबूत होना चाहिए, लेकिन और घोड़े ही के हवाले अपने आप को कर दिया। अब दूसरा ये कि घोड़ा अगर अपनी आंखों से देखेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा, तो अगर ये किसी बीना शख्स के आंखों से देखेगा जो उसके ऊपर सवार है, तो मंजिल पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो यही हाल है कि अगर ये सालिक अपने शेख के नूर बसीरत से चलेगा, जहां से चलाएगा, जैसे शाह सवार घोड़े को जहां से चलाएगा वो वहीं से चलेगा, तो अगर ये वहां से चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। अगर अपने बसारत बसीरत या अपना थोड़ा सा जो इल्म है, इसको अपनी जानकारी है, उसी से चला, तो इसके लिए भी मुश्किल है। कुछ समझ गए? जैसे घोड़ा अगर अपनी आंखों से चलेगा तो जाहिर है फिर वो किसी घास और किसी फूल और किसी सब्जार पर रुक कर या दूसरा रास्ता इख्तियार करके जाना था मगरिब की तरफ, जाएगा मशरिक की तरफ या शुमाल की तरफ। तो इसी तरह से सालिक अगर अपने आप को किसी ऐसे शख्स की हिदायत पर चलेगा जिसके बारे में कहा इत्तकु फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि ये अल्लाह के बंदे हैं, इनके फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं, अल्लाह के नूर से देखते हैं। गरज ये कि सालिक जो है वो ये चाहता है कि उसके नफ्स के अंदर जो अमराज हैं, जो नफ्स के अंदर जो इसके बीमारियां हैं, ये बीमारियां क्या हों, इनका इलाज हो। ऐसा क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि अगर इन बीमारियों के साथ, इन गंदगियों के साथ, दिल की और रूह की बीमारियों के साथ इसका इंतकाल हो गया इस दुनिया से, तो ये जन्नत में नहीं जाएगा। क्योंकि जन्नत पाकीज़ा जगह है, जन्नत पाकीज़ा जगह है, वहाँ गंदगी की चीज़ के साथ कोई नहीं जा सकता। वहाँ वही लोग जाएंगे जो इन कुदूरतों से क्या हो, पाक। तो बेहतर ये है कि जो शख्स चाहेगा कि वो अव्वल रहले में, यानी जहाँ दुनिया से चलते ही वो जन्नत में चला जाए, वरना तो मोमिन, हर मोमिन जो है जन्नत में चला जाएगा, लेकिन कुछ वक्त उसको जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में उसको ये सारी बीमारियाँ और कुदूरतें उससे निकलवा दी जाएंगी। लेकिन जहन्नम में जाना अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, जहन्नम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर एक साथ के लिए भी जहन्नम में जाए तो कोई वो कम अजाब नहीं है कि जाए कि वहाँ बहुत मुद्दत तक रहे जहन्नम। तो जो शख्स ही चाहता है कि वो अव्वल रहले में, तो उसको फिक्र लगेगी कि नहीं, देखो मेरे अंदर लालच भी है, मैं बड़ा लालची हूँ। अब आजमाएगा अपने अंदर क्या है वाकई मेरे अंदर हिर्स। हिर्स जो है ये बहुत बुरी क्या है, आदत है या अच्छी आदत है? हिर्स क्या है, अच्छी आदत है या बुरी आदत? बहुत बुरी। एक तो बुरी आदत और एक बहुत बुरी। आदत कहो या बीमारी कहो, बहुत बुरी। और ये जो हरीस होता है, ये हरीस इस हिर्स, हिर्स समझते हो लालच। अब इसकी वजह से हमेशा परेशान रहता है, इसको सुकून नहीं मिलता, अंदर अंदर घुटता रहता है। इसकी जिंदगी जहन्नम बनती है। क्यों? जहन्नम की एक सिफत है, जहन्नम की सिफत है हल मिन मजीद कहती रहती है। यानी जब उन लोगों को ढाला जाएगा जहन्नमी को जाने में, तो कहा और कुछ है लाओ, जहन्नम हल मिन मजीद। इसी तरह से जब इस नफ्स में हिर्स होती है, तो ये नफ्स भी इसी तरह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लवकान इब्न आदम अबादियां मिन अज़हब लबतगा साज़, और कम कहा अलैहि सल्लम कि अगर एक बनी आदम को दो सोने की वादियां वैली होंगी, तो तीसरी मांगेगा। दो इतनी वादी, इतनी बड़ी वादी, पहाड़ सोने के इसके पास हैं, अब इसको और क्या चाहिए? कहेगा नहीं, तीसरी चाहिए। और फरमाया, ला यम लो जव इब्न आदम इल्ला तुराब, इस बनी आदम की ये नफ्स की ये जो हिर्स है, ये यानी खत्म नहीं होती जब तक ना इस पर मिट्टी पड़े, यानी कब्र की मिट्टी। कब्र की मिट्टी इस पर पड़ गई, फिर चुप करता है, तब तक कहता है हल मिन मजीद। अब इस हिर्स की वजह से अब देखा जाएगा, हर एक अपने अपने जगह क्या करेगा, अपना मुहासबा करेगा, अपना तजजिया करेगा, अपने अंदरून को एनालाइज करेगा कि वाह क्या मैं इसे बरी हूँ। और अगर एक शख्स देखता है कि परेशान रहता है, क्या रहता है, परेशान रहता है, सुकून नहीं, नींद नहीं, रास्ता चलता है तो फिर भी बेसुकूनी है, रात को बेख्वाबी है, और कोई काम भी करता है तो यही सब कुछ है। तो अगर देखेगा, झांकेगा, तो इसमें इस हिर्स का बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन होगा इसका इसमें बड़ा दखल होगा, इसकी इस परेशानी के सबब ये शख्स जो है इसके अंदर लालच है, क्या है, हिर्स है। अब जितना है उसे और चाहता है, जितना है, और ईमान की निशानियों में एक निशानी बताई, हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह करे कि हमारी समझ में आ जाए। कि तुम, तुम्हारा ईमान तब तक कामिल नहीं, तुम्हारा ईमान तब तक अरे ये सबक न किसी साइकोलॉजी में मिलेगा, न साइकेट्री में मिलेगा, न किसी और किसी जगह मिलेगा, कि अगर इंसान वाकई हकीकी खुशी चाहता है, अगर इंसान वाकई खुशी, जिसको कहते हैं आप लोग, जिसको कहेंगे इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड हकीकी खुशी, तो इस सबक के अलावा, यानी मेरा सबक नहीं, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया दीन इस्लाम ने, इसके अलावा कहीं नहीं, न किसी मजहब में है और न किसी और फलसफे में है, न किसी माशरे न तहजीब में और न किसी, यानी अब ये कहो कि किसी शोबे में, फलसफे का हो, साइंस का हो और दूसरे फलों का हो, लेकिन इन सब की बुनियाद ईमान कामिल पर है। अब पता चलेगा खुद अंदाजा कि मेरा ईमान कैसा है। फरमाया कि तुम्हारा ईमान, ये मफहूमों में फर्ज करता हूं कि मफहूमन क्या मतलब रखता है। अब कभी बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे, कोई वास कहता है, दीन की बात कहते हैं, तो कभी कहता है मैं मफहूमन कहता हूँ, तो मतलब ये होता है कि ये हदीस के आईनी अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन मफहूम इस किस्म का, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मनसूब करना ये बहुत मन कज़ब अलैया मतअम यदन फल यतबवा मकादहू, जिसने मेरी तरफ किसी झूठ को मनसूब किया तो उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। तो ये एक हदीस थी जिससे सहाबा हदीस को रिवायत करने से भी रुके, शायद हमारे कहने सुनने में कुछ गलती, अगर हमने अल्फाज सही भी कहे शायद सुनने वाला गलत ताबीर कर। तो ये एक हदीस थी जिसने सहाबा की, जिसकी हमेशा लर्जान और तरसान रहते थे इस हदीस की वजह से, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मुझ पर आमदन कसदन झूठ भांडा तो चाहिए कि उसको अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में। तो फरमाया जब तक तुमको उस चीज पर ज्यादा भरोसा न हो, ये थोड़ा समझने का है, जब तक तुमको उस चीज पर ज्यादा भरोसा न हो जो तुम्हारे पास नहीं है, उस चीज से जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा ईमान तब तक कामिल नहीं है जब तक आपका आपका भरोसा उस चीज पर, उस चीज पर ज्यादा है वो जो आपके पास नहीं है, बनिस्बत उस चीज के जो आपके पास है। समझ गए? नहीं समझ। मतलब मसलन मेरे पास 50,000 रुपये मेरे जमा है गांव के, और मेरे पास मकान है, और मेरे पास नौकरी है, ये चीज मेरे पास है, और मेरा तकिया इन चीजों पर है, मेरी खुशी इस पर है कि मेरे पास 50,000 रुपये और मेरे पास नौकरी है, तनख्वाह है, मेरे पास कुछ करने की सलाहियत है, काम करने की, तो ये मैं इन पर भरोसा, और जो मेरे पास नहीं है, अब उसके अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, यानी मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा है ना, अब जितनी कायनात है, जितना ये सारा है, इसमें से मेरे पास कितना है, और बाकी जो सारा खजाना है वो तो अल्लाह के पास है, वो किसके पास, अल्लाह के पास है सारी चीज, किसके पास, मेरे पास कितना है, चलो मेरे 50,000 नहीं, मेरे पास 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपये है मेरे, फर्ज करें तो फिर भी तो थोड़ा है, फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई निस्बत नहीं है जो अल्लाह के पास है। तो जब तक इसको उस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं जो उसके पास नहीं है, यानी जो अल्लाह के पास इस बजाय इसके हाथ में नहीं, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होगा उस चीज से जो उसके हाथ में। अब ये चीज यहां ईमान की झांच होती है, यहां ईमान का क्या होता है, इम्तिहान होता है, यहां ईमान का इम्तिहान होता है। ईमान हसब الناس ان يتركوا اي حسب الناس يعني حسب الناس ان يتركوا وقالوا آمنا وهم لا يفتنون، اسی مفہوم کی آیت ہے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہاں یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا تو بس کافی ہے، آپ آزمائے نہیں جاؤ گے، کیا لوگوں کو یہی خیال ہے کہ وہ یہ کہیں گے آمنا ہم نے ایمان لایا بس، اور اس کے اوپر ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوگی، نہیں آزمائش ضرور ہوگی، اب یہاں آزمائش ہو رہی ہے، یہاں آزمائش ہو رہی ہے، دیکھو کس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، کس پر بھروسہ کرتا ہے، دیکھتے ہیں کس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب اس میں یہ دیکھا جائے گا یہ اس کا بھروسہ کس پر چیز، اگر اس کا ایمان جو ہے کامل ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو اللہ کے پاس ہر چیز ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے، کیا نہیں ہے وہاں، کس چیز کی کمی ہے، کس خزانے کی کمی ہے، کسی کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں وہاں، تو اللہ کے پاس ہر چیز ہے، اور اس کے پاس کتنا ہے، اپنے اس کے گمان میں بہت زیادہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں، قطرہ کو سمندر سے کوئی نسبت ہے اس کو وہ بھی نہیں نسبت ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بھروسہ کس پر، تو اپنے اندر پھر دیکھے گا میرے اندر ایمان کس پر، ساری چیز کی بنیاد کس چیز پر، ایمان پر، یعنی شخص 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1,000 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنے یہ کرتا ہے، وہ سب چیز ٹھیک ہے، ان سب کا بھی تبھی زیادہ ثواب ملے گا جب وہ بھی ایمان کے ساتھ، اگر اس کے برعکس صرف فرائض واجبات ادا کرتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ جو بھی کہتا ہے نماز میں وہ پورا سمجھ کر شعور کے ساتھ اور دل کے احساس کے ساتھ، پہلے بھی کئی بار جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے قبر تک دور ہوتا ہے، تمہارا اتنی چیز زبان سے کہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا یہ چیز غلط ہے، نہیں تمہارے زبان سے یہ غلط ہے، اس کا یہ نہیں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، تمہارا دل میں تو ہزاروں معبود जिन परस्पिश करता है, जिनकी अजमत तुम्हारे दिल में है, जिनकी मुकात तुम्हारे दिल में है, उसे कहता है। इसी तरीके से जब हमें सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है ईमान पर करनी है, कहते हैं हम बोल देते हैं कि भाई मेहनत ईमान पर करनी है, ईमान ईमान पर कैसी मेहनत करनी, वो समझाने वाले कम हैं। ईमान पर मेहनत का क्या मतलब होता है, कैसे ईमान पर मेहनत की जाएगी, वो समझाने वाले बहुत कम है। तो अगर इसका ईमान, अब ये बात किस पर आई, हिर्स पर, है ना। अगर इसके पास हिर्स है और तो ये मतलब इसका है कि इसका ईमान जो है कमजोर है। क्यों? ईमान की सिफत जो है वो दूसरी है, वो हिर्स की जिद है, अपोजिट। ईमान की जो सिफत है, एक चीज जब किसी, अगर किसी जगह पर गर्मी यानी आग होगी वहां गर्मी लाजमी होगी, जहां आग होगी वहां बर्फ नहीं रहेगी। आग और गर्मी क्या है, लाजमे मलजूम है। इसी तरह से ईमान और जो हिर्स की जिद है ये लाजमे मलजूम है, यानी जब एक को पाया जाएगा दूसरे को लाजमन पाया जाएगा। अगर एक नहीं है मतलब है दूसरी नहीं है। तो अब यहां हिर्स की जो, ईमान की जो सिफत है वो कनाअत है, हिर्स नहीं है। या कोई कहता है ईमान की सिफत हिर्स है, कोई कहता है? किसी जगह आपने पढ़ा सुना कि ईमान की सिफत हिर्स है, ईमान की सिफत कनाअत है। अब कनाअत अगर नहीं है, ये जिस दर्जे की कमजोर है उसी दर्जे का ईमान है। अब ईमान कोई तो कहते हैं मराई चीज, यानी विजिबल चीज नहीं है, कोई मेजरेबल चीज नहीं है, कोई वेटेबल, यानी हम कुछ वजन करेंगे, आप इसको माप लेंगे, हा? ऐसी चीज नहीं है, बल्कि आप इसको अलामत से पहचान लें। इसकी इसकी जो सिफतें हैं, खासियतें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप हवा को नहीं देखते हैं लेकिन हवा की जो खासियतें हैं उनसे आप पहचानते हैं कि ये जगह हवा है। अगर आग जलती है कहेंगे यहाँ हवा है, अगर वो नहीं जलती है कहेंगे यहाँ हवा ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपने ऑक्सीजन बराह रास्त आंखों से तो नहीं देखा लेकिन उसकी खासियत को देखा। तो किसी चीज को आयरन के साथ ले जाएंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो आप कहेंगे इसमें मैग्नेटिज्म है, तो आपने मैग्नेटिज्म को नहीं देखा, मकनातीसी असर को, मकनातीस को नहीं देखा, उसके असर को देखा। इसी तरह से जो ईमान है ये कोई विजिबल चीज, देखी जाने वाली चीज, जिसको मकील और मौजून यानी जिसको मेजर किया जाए या जिसको मापा जाए या देखा जाए, ऐसी चीज नहीं है। हाँ, इसकी खासियतें देखना, तो ये हमें अपने अंदर जांच करना है, इसको जांचना है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। क्या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपने दिल को ये भी मत एक नफस का धोखा है, चलो हम जाते हैं दावा सेंटर, कुछ बात सुनते हैं, चलो ये काफी है, हम दीन की को हासिल करने की मेहनत करते हैं। तो याद रखो ये जो हमारा मजहब है, दीन है, ये अमल का नाम है, ये नाम अमल का है। ये उन फलसफियों की तरफ खाली फलसफा नहीं है, औरों की तरफ खाली अकीदों का नाम नहीं है, बातों का नाम नहीं है, ये दीन अमल का नाम है। हर चीज और यहाँ हर लम्हा जो है वो वहां क्या है, यानी क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है। ہر لمحہ وہاں پر وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتا مگر ایک طاق میں بیٹھا ہوا اس کو فوراً ہی پکڑ لیتا ہے اور ضبط کر لیتا ہے، یعنی ریکارڈ کر لیتا ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی بھی اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایسا نہیں ہے جو اس نے کہا نہیں، اس نے لکھا نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ تو یہ دین جو ہمارا ہے یہ عمل کا دین، اور اس عمل کو ہم، اب یہاں دیکھو یہ بھی ہے نا، مطلب اسی کو میں جو عرض کرتا کہ اصل میں فہم دین کی ضرورت ہے۔ اب یہ عمل کس چیز کا نام ہے؟ ہاتھ کا عمل، بدن کا عمل، پیروں کا عمل، جسے نماز پڑھیں گے اوپر نیچے بیٹھیں گے تو بدن کا عمل ہو جائے گا، اسی طرح سے عبادات۔ لیکن ایک ہوتا ہے دل کا عمل، قلب کا عمل، تو ایمان کس کا عمل؟ یہ تو ایسا عمل نہیں کہ اس نے اٹھ کر ایک ٹانگ پر رات کو بیٹھے گا تو کہا ٹھیک ہے میں نے عمل کر لیا۔ ایمان جو ہے یہ دل کا، اب حرص کو نکالنا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کوئی کام کرتا ہے؟ بظاہر اس کا بدن کوئی کام کرتا ہے، لیکن ایسا کام کرتا ہے یہ بڑا ولی شخص ہے۔ اسی لیے جو کاملین ہوتے ہیں، کاملین سمجھتے ہو پہنچے ہوئے بزرگ، وہ عام لوگ ان کو نہیں پہچانتے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام کرتا ہے۔ اب کسی شخص نے غیبت نہیں کی، اب اس نے کیا عمل کیا؟ کوئی عمل کیا، کوئی محنت کی، کوئی مشقت کی، کوئی شکریزاری کی، ابھی کچھ نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھو اس کا یہ عمل، یہ کتنا وسیع عمل، جس نے غیبت نہیں کی۔ اسی کے لیے فہم دین کی ضرورت ہے۔ تو اس کا خاص دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ ہمیں فہم دین، بہت کم لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ آپ نہ سمجھیں کہ میرے پاس جیسے آپ ہیں ویسا میں بھی آپ سے بلکہ کم تر کا، لیکن یہاں ہم جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں، ہم جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں خود کو فہم اس کا عطا کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاق رذیلہ سے ہمارے کو پاک کرے، اخلاق حمیدہ سے ہمیں نوازے، اپنی رضا سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے اللہ تعالی ہمیں نوازے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ واخر دعوانا السلام علیکم۔